एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई के मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में स्वागत। आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां धुंध है, राज हैं और एक नाम है जो हर जगह गूंजता है, रिबेका।
हाँ, डैफनी डू मॉरिए का ये अद्भुत उपन्यास।
अद्भुत और उतना ही बेचैन करने वाला भी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मुझे लगता है ये इंसानी मन की गहराइयों में एक सफर है। रिश्तों की उलझने, अतीत का साया, बहुत कुछ है इसमें।
बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह है।
तो आज हम इसी जाल को खोलने की कोशिश करेंगे, रिबेका के किरदारों को समझेंगे, कहानी के अहम मोड़ों को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये किताब आज भी इतनी ताकतवर महसूस होती है।
हाँ, क्यों ये पाठकों को पकड़ लेती है। बिल्कुल,
चलिए शुरुआत करते हैं लेखिका से, डैफनी डू मॉरिए, 20वीं सदी की एक बहुत खास ब्रिटिश लेखिका।
जी, और उनकी खासियत थी माहौल बनाना, रहस्य बुनना, वो कमाल करती थी इसमें।
सुना है उनका परिवार भी काफी कलात्मक था, पिता अभिनेता, दादा उपन्यासकार।
हाँ बिल्कुल, तो वो नाटकीयता और किरदारों की समझ वो शायद उनके खून में ही थी, और ये दिखता है उनके काम में, साफ झलकता है।
और उनकी कहानियों की सेटिंग अक्सर कॉर्नवॉल होती है, वो तटीय इलाका।
हाँ, वो पथरीला तूफानी सा किनारा, जैसे रिबेका का मैंडले एस्टेट, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो अपने आप में एक किरदार लगता है ना।
सही कहा, जैसे वो जगह किरदारों के अंदर की तूफान को बाहर दिखा रही हो।
बिल्कुल, और उनकी शैली, गॉथिक परंपरा तो है ही, रहस्यमयी हवेली, दमनकारी माहौल,
हाँ वो सब,
पर डू मॉरिए उसे मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से मिला देती हैं। अलगाव, जुनून, पहचान की तलाश, ये सब आज के मुद्दे हैं।
और रिबेका आई 1938 में, दुनिया पर जैसे युद्ध के बादल मंडरा रहे थे।
हाँ, एक अनिश्चितता का माहौल था, शायद इसीलिए उपन्यास के वो छुपे हुए राज, पहचान का संकट, अतीत का बोझ, ये सब लोगों को बहुत अपने से लगे।
और फिर अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म ने तो इसे जैसे अमर ही कर दिया। 1940 में आई थी और ऑस्कर भी जीता उसने।
जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। ये डू मॉरिए के करियर का एक बड़ा मोड़ था।
अच्छा, तो अब उपन्यास पर आते हैं। शुरुआत ही इतनी दमदार है, वो पहली लाइन,
पिछली रात मैंने सपना देखा कि मैं फिर से मैंडले गई। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वेंट टू मैंडले अगेन, अंग्रेजी साहित्य की सबसे मशहूर पंक्तियों में से एक।
और एक ही वाक्य में कितना कुछ है, एक खोया हुआ घर, एक उदासी, एक नॉस्टैल्जिया।
बिल्कुल, तुरंत पता चल जाता है कि ये कहानी अतीत की है, कुछ खो चुका है। कहानी सुना रही है एक जवान लड़की, अनुभवहीन और गुमनाम, उसका कोई नाम नहीं है पूरी कहानी में।
ये बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, नाम ना होना।
हाँ, ये उसकी पहचान की कमी को दिखाता है। वो मोंटे कार्लो में एक अमीर अमेरिकी औरत है, मिसेस वैन हॉपर, उनकी पेड कंपेनियन है, मतलब एक तरह से नौकरी ही है, और काफी दबी दबी सी जिंदगी।
और तभी एंट्री होती है मैक्सिम डी विंटर की।
हाँ, अमीर, आकर्षक, रहस्यमयी और विधुर, उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है,
और फिर
एक तेजी से पनपता रोमांस और शादी। उस लड़की के लिए तो जैसे कोई परी कथा सच हो गई, उस घुटन वाली जिंदगी से आजादी।
लेकिन ये गुमनाम होना, जैसे आपने कहा, लेखिका ने जानबूझकर किया है। ये उसकी अपनी पहचान की कमी को, दूसरों पर उसकी निर्भरता को दिखाता है।
हाँ, और यही कमी मैंडले पहुंचकर एक डरावने सपने में बदल जाती है। मैक्सिम का वो पुश्तैनी घर मैंडले,
जो दूर से सपनों का महल लगता होगा,
पर अंदर से वो एक कैदखाना है, रिबेका की यादों का कैदखाना। मैक्सिम की पहली पत्नी रिबेका, जिसकी एक साल पहले एक नौका दुर्घटना में मौत हुई थी, पर उसकी मौजूदगी
हर जगह है।
हर जगह, मैंडले का हर कोना, हर चीज, जैसे रिबेका की कहानी कहती है। और हमारी ये नायिका, ये नई मिसेस डी विंटर, खुद को एक ऐसे भूत से लड़ता हुआ पाती है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं,
और वो हार रही है लगातार,
और इस लड़ाई को और मुश्किल बनाती है घर की हाउसकीपर मिसेस डैनवर्स। ओ मिसेस डैनवर्स, वो तो खुद एक चलता फिरता भूत है। सिर्फ हाउसकीपर नहीं, वो रिबेका की कट्टर भक्त है,
जैसे रिबेका की वसीयत की रखवाली कर रही हो।
बिल्कुल, और वो नई मिसेस डी विंटर को एक बाहरी, एक घुसपैठिया समझती है, उसे मानसिक रूप से तोड़ने की, ये एहसास दिलाने की कि वो रिबेका जैसी कभी नहीं बन सकती, इसकी कोई कसर नहीं छोड़ती।
तो कहानी का असली संघर्ष यही है, क्या ये गुमनाम लड़की अपनी पहचान ढूंढ पाएगी या रिबेका की छाया उसे निगल लेगी।
हाँ, यही केंद्रीय संघर्ष है।
चलिए इन किरदारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले हमारी गुमनाम नायिका, दूसरी मिसेस डी विंटर।
जैसा हमने कहा, शुरू में वो बहुत डरपोक है, असुरक्षित है। उसे अपनी सामाजिक हैसियत का एहसास है कि वो मैक्सिम के मुकाबले कुछ भी नहीं। मैंडल ले आकर ये भावना और बढ़ जाती है
रिबेका की महानता की कहानियां सुन सुनकर।
हाँ, और मिसेस डैनवर्स उसे जैसे अपनी कठपुतली बना लेती हैं। वो बेचारी लगातार अपनी तुलना उस काल्पनिक रिबेका से करती रहती है जिसे सब आदर्श मानते हैं।
लेकिन उसमें बदलाव आता है।
हाँ, और यही सबसे अहम है। जब रिबेका की सच्चाई सामने आती है, तब ये डरी सहमी लड़की जैसे जाग उठती है। वो अपनी असुरक्षाओं से ऊपर उठकर एक मजबूत औरत बनती है, जो मैक्सिम के साथ खड़ी होती है, सिर्फ उसके पीछे नहीं। ये बदलाव ही कहानी की जान है।
बिल्कुल। अब बात करते हैं मैक्सिम डी विंटर की। वो भी कोई सीधा साधा किरदार नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंडरले का अमीर रहस्यमयी मालिक, वो क्लासिक बायरनिक हीरो टाइप है। मतलब आकर्षक, सोफिस्टिकेटेड, लेकिन मूडी, राजदार और अतीत के बोझ तले दबा हुआ।
शुरुआत में वो नायिका के लिए किसी राजकुमार जैसा लगता है, बचाने वाला।
हाँ, पर मैंडरले आते ही उसका असली रंग दिखता है। उसका बदलता मूड, अचानक भड़क जाना, खासकर जब रिबेका का जिक्र आता है, वो डराता है।
उसका सफर भी एक तरह से खुलने का सफर है। परतें हटती हैं।
सही कहा। वो शोक में डूबे पति का जो मुखौटा पहने हैं, वो उतरता है और अंदर से एक टूटा हुआ, अपराध बोध से भरा इंसान निकलता है, जो एक भयानक राज छुपाए है।
नैतिक रूप से काफी उलझा हुआ। नायिका के लिए उसका प्यार शायद सच्चा है,
पर वो भी अतीत के सायों में घिरा है।
हाँ,
और उन सायों को जिंदा रखने वाली मिसेस डैनवर्स,
उसके बारे में सोचते ही ठंड लगने लगती है।
हाँ, वो मैंडले की भयानक हाउसकीपर, वो जैसे गॉथिक आतंक का प्रतीक है।
रिबेका के लिए उसकी वफादारी वो सामान्य नहीं है।
नहीं, वो जुनून है, विकृत है। वो नई मिसेस डी विंटर को दुश्मन मानती है। उसे भगाने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ देती है।
वो सिर्फ एक विलन नहीं है, वो जैसे अतीत की पकड़ का जिंदा सबूत है।
बिल्कुल, वो अतीत की वो शक्ति है जो वर्तमान को पनपने नहीं देना चाहती। और उसका जो आखिरी काम है, ओह, वो उसे साहित्य के सबसे यादगार विलन्स में से एक बना देता है।
और अंत में वो जो है भी और नहीं भी रिबेका डी विंटर।
हाँ, कहानी शुरू होने से पहले मर चुकी है, पर शायद सबसे ताकतवर किरदार। वो एक अनुपस्थित उपस्थिति है, जैसे कहते हैं।
कहानी के बड़े हिस्से तक हम उसे दूसरों की नजरों से ही जानते हैं।
हाँ, और वो छवि क्या है? खूबसूरत, बुद्धिमान, आकर्षक, सामाजिक, हर चीज में परफेक्ट। एक ऐसा आदर्श जिसकी बराबरी नामुमकिन है। और यही नायिका को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है।
मैंडले की हर चीज पर उसका वो आर मोनोग्राम, जैसे वो अब भी वहां की रानी हो।
हाँ, वो आर जैसे नायिका को चिढ़ाता है, उसकी कमतरी का एहसास दिलाता है।
लेकिन फिर ये पूरा मिथक टूट जाता है।
हाँ, और वो उपन्यास का सबसे बड़ा शौक है। जब असली रिबेका सामने आती है, क्रूर, मतलबी, धोखेबाज, पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है।
वो दिखावा बनाम वास्तविकता वाली थीम का चरम है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
बिल्कुल। चलिए, अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है उस पर आते हैं। मोंटे कार्लो में मुलाकात, जल्दबाजी में शादी, ये शुरुआती रिश्ते में एक पावर इम्बैलेंस सेट कर देती है।
हाँ, और नायिका की असुरक्षा भी साफ दिखती है।
फिर वो मैंडले आते हैं। घर आलीशान है, पर उसमें एक अजीब सी उदासी, एक भारीपन है।
और मिसेस डैनवर्स का वो ठंडा स्वागत।
हाँ,
और रिबेका का कमरा, जिसे बिल्कुल वैसे ही रखा गया है।
ये सब नायिका को और अकेला और बाहरी महसूस कराता है। मैक्सिम का अजीब बर्ताव, रिबेका पर बात करने की मनाही, रहस्य गहराता जाता है।
फिर नायिका वो कॉस्ट्यूम बॉल रखने का फैसला करती है, अपनी जगह बनाने की कोशिश में।
हाँ, एक बेताब कोशिश। और यही मिसेस डैनवर्स अपनी चाल चलती है। वो बड़ी चालाकी से नायिका को एक ड्रेस चुनने में मदद करती है। कहती है, ये मैक्सिम की किसी पूर्वज की है।
लेकिन
असल में वो वही ड्रेस होती है जो रिबेका ने अपनी आखिरी बॉल पर पहनी थी।
ओह, ये तो बहुत क्रूर है।
हाँ, और जब नायिका उस ड्रेस में नीचे आती है, मैक्सिम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मेहमान हैरान रह जाते हैं। ये पब्लिक में उसका अपमान है जो उसे पूरी तरह तोड़ देता है।
और इसी वक्त मिसेस डैनवर्स उसे उकसाती है।
हाँ, इसी सबसे कमजोर पल में उसे खिड़की के पास ले जाकर कहती है, कूद क्यों नहीं जाती, जाओ।
ये कहानी का सबसे अंधकारमय बिंदु लगता है।
बिल्कुल, ऐसा लगता है अब सब खत्म। लेकिन तभी
कहानी पलटती है।
हाँ, पास की खाड़ी में एक डूबी हुई नाव मिलती है और उसमें रिबेका की लाश, असली लाश।
जबकि सब मानते थे कि वो समुद्र में बह गई थी।
हाँ, इस खोज से मैक्सिम पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है और वो नायिका के सामने वो राज खोल देता है जिसे वो छुपाए हुए था।
क्या राज?
कि उसने कभी रिबेका से प्यार नहीं किया, वो उससे नफरत करता था। उनकी शादी सिर्फ एक दिखावा थी। रिबेका असल में एक क्रूर, मतलबी, बेवफा औरत थी।
ओह।
और अपनी मौत की रात उसने मैक्सिम को ताना मारा था, कहा था कि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और उस बच्चे को डी विंटर का वारिस बनाकर पालेगी, मैक्सिम को जलील करेगी।
और इसी गुस्से में
मैक्सिम ने उसे गोली मार दी, फिर लाश को नाव में रखा और उसे डुबो दिया ताकि लगे कि ये एक हादसा था।
ये कबूलनामा ये नायिका के लिए कैसा रहा होगा? एक तरफ भयानक सच, दूसरी तरफ शायद राहत।
बिल्कुल यही विरोधाभास है, पर ये सच उसे आजाद करता है। वो आदर्श रिबेका जिसका भूत उसे सता रहा था, वो तो थी ही नहीं, वो एक झूठ थी। अब उसका प्यार मैक्सिम के लिए सिर्फ आकर्षण नहीं रहता, वो एक गहरा बंधन बन जाता है। वो उसकी रक्षा करना चाहती है, वो पहली बार एक वयस्क की तरह महसूस करती है।
सिर्फ पत्नी नहीं, साथी बन जाती है।
हाँ,
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
नहीं,
रिबेका का एक चालाक चचेरा भाई और प्रेमी है, जैक फेवल। वो मैक्सिम पर शक करता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। पुलिस जांच फिर से खुल जाती है।
यानी खतरा अभी टला नहीं?
बिल्कुल नहीं। जांच उन्हें लंदन के एक डॉक्टर तक ले जाती है जिससे रिबेका अपनी मौत वाले दिन मिली थी।
यहाँ तो सांसें रुक जाती होंगी पढ़ने वाले की। क्या मैक्सिम पकड़ा जाएगा?
हाँ, तनाव चरम पर होता है, लेकिन आखिरी मोड़ वो और भी हैरान करने वाला है।
क्या?
डॉक्टर बताता है कि रिबेका गर्भवती नहीं थी।
क्या? तो फिर?
उसे कैंसर था और वो कुछ ही महीनों में एक दर्दनाक मौत मरने वाली थी। ओह, तो इसका मतलब?
इसका मतलब रिबेका ने अपनी मौत की साजिश खुद रची थी। उसने जानबूझकर मैक्सिम को उकसाया कि वो उसे मार दे। ये उसकी आखिरी सबसे भयानक क्रूरता थी, मरते मरते मैक्सिम की जिंदगी तबाह कर जाना।
तो हत्या का मकसद ही खत्म हो गया।
हाँ, वारिस वाली बात झूठी निकली तो मैक्सिम पर केस नहीं बनता, कानून की नजर में वो बेकसूर साबित हो जाता है।
वो कानून से तो बच गए, पर क्या सच में बच गए?
यही सवाल है। जैसे ही वो राहत की सांस लेकर मैंड्रिले की तरफ लौटते हैं, उन्हें दूर से आग की लपटें दिखती हैं।
मैंड्रिले जल रहा है।
हाँ, ये मिसेस डैनवर्स का आखिरी काम है, उसका बदला। वो रिबेका की जगह किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने घर जलाकर जैसे अतीत को ही मिटा दिया और ये पक्का कर दिया कि डी विंटर्स कभी अपने घर वापस न लौट सकें। उन्हें एक तरह का निर्वासन मिला अंत में।
कितनी पढ़ते हैं इस कहानी में। चलिए कुछ मुख्य विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो पहचान का सवाल। नायिका का नाम न होना ही कितना बड़ा प्रतीक है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक औरत, खासकर उस वक्त के समाज में, अपनी पहचान बनाती है, अपनी आवाज ढूंढती है, जब उसकी पहचान अक्सर उसके पति से जुड़ी होती है।
और दूसरा, अतीत का बोझ। मैंडले जैसे उसी बोझ का प्रतीक है।
बिल्कुल, सारे किरदार अतीत में फंसे हैं। नायिका एक झूठे आदर्श अतीत से लड़ रही है, मैक्सिम अपने भयानक अतीत के राज से, और मिसेस डैनवर्स तो अतीत को जाने ही नहीं देना चाहती।
कहानी जैसे कहती है कि अगर आप अतीत का सामना नहीं करेंगे तो वो आपका भविष्य खा जाएगा।
सही बात है। और फिर दिखावा बनाम वास्तविकता, ये तो शायद सबसे बड़ा थीम है।
हाँ, मैंडले में सब कुछ ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और। डी विंटर्स की शादी, रिबेका की छवि, घर की शान, सब एक नकाब हैं।
और कहानी धीरे धीरे ये सारे नकाब उतारती है, दिखाती है कि चमक के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है।
और ईर्ष्या और असुरक्षा, इसका भी ये जबरदस्त चित्रण है।
हाँ, खासकर नायिका की ईर्ष्या। वो किसी असल इंसान से नहीं, एक भूत से जल रही है, एक ऐसे आदर्श से जो शायद था ही नहीं। डूम और ये दिखाती हैं कि असुरक्षा कैसे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है।
अंत में अपराध और न्याय का सवाल, ये बड़ा पेचीदा है यहाँ।
हाँ, कोई आसान जवाब नहीं है। मैक्सिम कातिल है, पर हम चाहते हैं वो बच जाए। रिबेका शिकार है, पर वो विलेन निकलती है।
और मैंड्रले का जलना, क्या वो न्याय है या सिर्फ बर्बादी?
ये सवाल पाठक के लिए छोड़ दिया गया है। शायद ये दिखाता है कि कानून का न्याय अलग है और कर्मों का फल अलग।
कथा शैली की बात करें तो ये पूरी कहानी पहले पुरुष में है, नायिका के नजरिए से।
हाँ, और ये बहुत असरदार है। हम सब कुछ उसी के डर, उसी की शंकाओं के जरिए देखते हैं। हम भी उसी की तरह अंधेरे में रहते हैं, इससे तनाव और बढ़ता है।
हम वही जानते हैं जो वो जानती है, और प्रतीकवाद का इस्तेमाल भी कमाल का है।
हाँ, जैसे मैंडले, वो सिर्फ घर नहीं, वो अतीत का बोझ है। उसका जलना शायद दिखाता है कि अतीत से पूरी तरह मुक्त होना मुमकिन नहीं।
और वो लाल रोडोडेंड्रॉन के फूल,
हाँ, वो जैसे रिबेका के पैशनेट, बेकाबू और खतरनाक स्वभाव का प्रतीक है।
और समुद्र, वो राज छुपाता भी है, खोलता भी है।
बिल्कुल, वो भाग्य की ताकत का भी प्रतीक है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पूर्वाभास का इस्तेमाल भी अच्छा है। वो शुरू का सपना, मैक्सिम का गुस्सा, ये सब इशारे देते हैं।
कुछ यादगार पंक्तियों को फिर से याद करें। पहली तो जाहिर है, पिछली रात मैंने सपना देखा कि मैं फिर से मेंडल ले गई।
हाँ, ये शुरुआत ही पूरी कहानी को एक बीती हुई याद, एक कसक की तरह पेश करती है। बता देती है कि मेंडले अब सिर्फ एक सपना है।
और नायिका का वो एहसास कि हम कभी मेंडले वापस नहीं जा सकते।
ये सिर्फ घर के जलने की बात नहीं, ये दिखाता है कि वो लोग बदल चुके हैं। अतीत ने उन्हें बदल दिया है, वो अब वापस नहीं जा सकते, उस वक्त में भी नहीं, उस जगह पर भी नहीं।
मैक्सिम का वो कबूलनामा, मैं उससे नफरत करता था, रिबेका जीत गई।
ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। पहला हिस्सा मिथक तोड़ता है, पर दूसरा हिस्सा रिबेका जीत गई, ये ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि मौत के बाद भी रिबेका का इरादा पूरा हुआ। मैंडले खत्म और डी विंटर्स निर्वासित, उसकी नफरत जीत गई।
और मिसेस डैनवर्स की वो भयानक फुसफुसाहट, कूद क्यों नहीं जाती, जाओ।
उफ, वो वाकई डरावना है। वो मिसेस डैनवर्स की क्रूरता की हद है। वो जैसे रिबेका की इच्छा पूरी करने का हथियार बन गई है जो नायिका को मिटा देना चाहती है।
ये किताब पढ़ने वाले पर कैसा असर छोड़ती है? मेरे ख्याल से एक लगातार बनी रहने वाली बेचैनी।
हाँ, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक चिंता। आप नायिका के डर, उसकी असुरक्षा को इतना महसूस करते हैं कि लगता है आप खुद मैंडले में फंस गए हैं।
बिल्कुल, और मैक्सिम के कबूलनामे के बाद वो चिंता एक हाई स्टेक थ्रिलर में बदल जाती है। आप चाहते हैं कि वो बच निकले।
हाँ, पर अंत कोई खुशी वाला नहीं है, वो उदास है, परेशान करने वाला है। कोई आसान जीत नहीं मिलती। वो कानून से बचते हैं पर सब कुछ खो देते हैं।
तो जो याद रह जाता है वो है शायद यादों का भूतिया असर और अतीत को जरूरत से ज्यादा अच्छा समझने का खतरा।
हाँ, ये कहानी जैसे चेतावनी देती है, दूसरों से अपनी तुलना मत करो, अपनी पहचान बनाओ। और ये सवाल हमेशा रहता है, क्या उन्हें कभी सुकून मिला होगा?
इसमें कोई शक नहीं कि रिबेका मनोवैज्ञानिक रहस्य का एक मास्टरपीस है। ये पहचान, याददाश्त, जलन, नैतिकता जैसे सवालों को बहुत गहराई से और खूबसूरती से उठाता है।
ये हमें याद दिलाता है कि चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और अतीत के अनसुलझे किस्से कैसे हमारे आज और आने वाले कल पर असर डालते रहते हैं। इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक है।
और शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये हमारे लिए छोड़ जाता है वो ये है कि हम सब अपनी जिंदगियों में किन अनदेखी रिबेकाओं के साए में जी रहे हैं, किन भूतों से लड़ रहे हैं जिन्हें हमने खुद अपने मन में पाल रखा है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।